नमस्कार, मैं हूं नगमा। आपने अभी अभी सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने इस संकट की घड़ी में राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया और कहा कि जन भागीदारी से ही लोग लड़ सकते हैं कोरोना से, और इस बात को दोबारा बताया कि कैसे दवाई और उसके साथ साथ कड़ाई दोनों जरूरी है। वैक्सीन के बाद भी भरोसा दिलाया कि भारत के पास एक बहुत ही सशक्त फार्मा सेक्टर है जो तेजी से दवाइयां बना सकता है, और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। और लगातार देश के बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन की जो कमी है उससे निपटने के लिए तमाम पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम आपको ये खबरें दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली तक में जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हों या वो पब्लिक सरकारी अस्पताल हों, उन तमाम जगहों पर ऑक्सीजन एक सीमित समय के लिए बचा है। और ऐसे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कोर्ट में है और इस बात की अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री के ऑक्सीजन जल्दी से मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमाम कदम उठाए गए हैं कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द मिले। तो राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और ये भी बताया कि वैक्सीनेशन का जो काम है वो भारत में कितनी तेजी से चला है, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहां पर हुए हैं। प्रधानमंत्री की इन बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको हम सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा है। कादम्बिनी, एक बार फिर हमने प्रधानमंत्री को सुना, इस दफा क्या उनके मुख्य मंत्र थे? आपको ये भाषण इस समय कितनी सांत्वना देने वाला लगा, क्योंकि लोग जो हैं वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बीमारी से तो जूझ ही रहे हैं।
देखिए नगमा, इस बयान के ये जो संदेश है इसके दो तीन पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है जो समझने वाली बात है, वो ये कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि कुछ ही दिनों में चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हॉस्पिटल बेड्स हो या फिर दवाइयां हो, ये सब उपलब्ध होंगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। अभी जो लोग इस बात के लिए परेशान हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, जिनको इंतजार है, जिनके मरीज जो हैं वो हॉस्पिटल के बाहर मर जा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी या दवाइयां जो बिक रही हैं कई कई हजार में, कुछ रुपयों की दवाइयां, फौरन इस लेवल पर क्या होगा उन लोगों को जो एक एक टैंक के लिए, ऑक्सीजन के एक एक सांस के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनको इससे कितना आश्वासन मिलेगा? सबसे बड़ी चीज समझने वाली ये है। ये जरूर है कि पीएम ने कहा है कि लगातार कोशिश चल रही है, सब कुछ सभी कमियां पूरी की जाएंगी, लेकिन अभी जो फौरन जो लोग इस अभी पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो पीएम भी कह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं ये पीड़ा, लेकिन उसका क्या होगा, कैसे तुरंत मदद मिलेगी लोगों तक, जब तक मदद पहुंचेगी नहीं तब तक वो उस प्रकार से आश्वस्त नहीं हो पाएंगे। ये जरूर है कि पीएम ने जो बोला है उसके मुताबिक कुछ दिनों में ये सब कुछ उपलब्ध होगा। जहां तक बाकी चीजों का सवाल है कि कोविड में व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस तरह से सबको साथ आना चाहिए, मुझे लगता है कि लोग पहले ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देख रही होंगी तो आपने देखा होगा कैसे एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को लोग शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि किस तरह से फौरन मदद पहुंचाई जाए, तो लोग कितना आश्वस्त हुए हैं ये देखने वाली बात होगी।
जी जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी। और साथ साथ हम आपको ये बात दिला दें याद कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि इस समय लॉकडाउन जो है वो राज्यों का आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो इसके क्या मतलब हैं ये भी समझना होगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उससे जो मौजूदा संकट है, पहले तो सबसे पहले समझना चाहेंगे कि उस पर कितना असर पड़ता है, क्या स्थिति है हमारे ऑक्सीजन सप्लाई की बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में, महाराष्ट्र के बड़े शहरों में, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इससे कुछ बात साफ होती है? उन्होंने लॉकडाउन की बात की कि राज्य इसको आखिरी विकल्प रखें, इस पर इससे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय ये चर्चा हो रही है मुंबई में कि लॉकडाउन लगाया जाए।
दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और दोनों में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको एड्रेस करने की कोशिश की है। ऑक्सीजन के बारे में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मेरी सप्लायर्स के साथ बातचीत हुई है, मैंने एक पूरी बैठक की है इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि राज्यों को 1,00,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की पहल शुरू कर दी गई है। ये प्रक्रिया चल रही है, प्रोक्योरमेंट चल रहा है और बहुत जल्दी उसकी वो जो है वो राज्यों को मुहैया कराया जाएगा। साथ में उन्होंने राज्य स्तर पर साथ में जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, नए प्लांट सेटअप करने के लिए जो पहले से अप्रूवल्स थे उस काम को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा है कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है अभी ऑक्सीजन का, उसका डायवर्शन किस तरह से जल्दी किया जाए मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी जो इंडस्ट्री के पास जो सरप्लस ऑक्सीजन है अवेलेबल अभी, उसका मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से कोरोना संकट के मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए किया जाए, इस दिशा में पहल की जाए। उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल मेडिसिन है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बहुत जल्दी उसके नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स का भी जिक्र किया और कहा कि उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, जो हेल्थ केयर की जो क्षमता है उसको और ऑगमेंट किया जा रहा है, यानी उसको और उसका और विस्तार किया जा रहा है। नए हॉस्पिटल्स हैं, उनको कोविड हॉस्पिटल के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है, तो इसका भी उन्होंने बहुत विस्तार से विवरण किया। और जो बात आपने शुरू में कही नगमा, मुझे लगता है कि आज बहुत स्पष्ट निर्देश राज्यों को प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन लगाएं आखिरी विकल्प के तौर पर। और इसका सीधा मतलब यह है कि पिछले जब मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बातचीत हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री ने यह बात बहुत प्रमुखता से कही थी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमको फोकस करना होगा। यानी जैसे आज उत्तर प्रदेश में करीब 5 जिले हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, बाकी जो जिले हैं करीब 80% से ज्यादा वहां पर लॉकडाउन नहीं है नगमा अभी। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन का यह मतलब है कि जो जिले ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो इलाके ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर मरीजों की संख्या अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती जा रही है, वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए आखिरी विकल्प के तौर पर, जब कोई दूसरा विकल्प ना बचे। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह भी कोशिश करनी है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित ज्यादा ना हो, ये भी हमको इस लड़ाई में सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस जो अभी शुरू हो रहा है उसकी ओर भी इशारा किया है और कहा है कि राज्यों को जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको विश्वास में लेना होगा। उन्होंने कहा कि जो मजदूर जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनका काम बंद नहीं होगा। और जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट भी किया जाएगा जहां वो अभी स्थापित हैं, और उनका काम भी बंद नहीं होगा। यानी जो वर्कर्स में जो एक आशंका दिखाई देती है कुछ शहरों में अभी, उसको उस चिंता को एड्रेस करने के लिए राज्य सरकारों को पहल करना होगा, ये बात भी बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन मुख्य तौर पर जंग भी लड़नी है कोरोना के खिलाफ, लेकिन साथ में ये इंश्योर भी करना है कि लॉकडाउन जो है वो सिर्फ आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, हमें लॉकडाउन से बचना है। ये बात प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से कही है और वर्कर्स में जो चिंता है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की है।
जी धन्यवाद आपका हिमांशु। मेरे साथ अखिलेश भी जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, इस पर चर्चा करने के लिए। अखिलेश, इंतजार था लंबे समय से लोगों को कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे तो क्या बातें होंगी, क्योंकि इस समय जो मौजूदा स्थिति है दिल्ली में, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि ज्यादातर बड़े अस्पताल कोई 8 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे इस तरह की ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं। लोग एक दूसरे की मदद में जुटे हुए हैं, दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसमें कुछ लॉन्ग टर्म बातें हैं कि फार्मा इंडस्ट्री किस तरह से इस चुनौती का सामना करेगी और तेजी से दवाएं बनेंगी, कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल किया जाएगा मेडिसिनल ऑक्सीजन के लिए, जो फौरी राहत मिल सकती है उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? क्या आपको लगता है कि जो लोग मानसिक रूप से इस समय इतने परेशान विचलित हैं बीमारी के साथ साथ, उनको इस बात से कुछ उनके लिए राह निकलती है?
देखिए नगमा, सब लोग जो हैं वो चाहे राज्य हो चाहे आम जनता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल से जो लड़ाई चली है कोरोना महामारी के खिलाफ, इसकी जो पूरी बागडोर है ये खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले रखी थी। पिछले 3-4 दिनों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार वो एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। आज शाम को भी उन्होंने जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके साथ लंबी बैठक की है, इससे पहले डॉक्टरों के साथ उनकी बातचीत हुई है, फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों के साथ उनकी बातचीत हुई, तमाम जो मंत्रालय हैं उनके सेक्रेटरीज के साथ उनकी मीटिंग हुई। तो इस तरह से एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला उनके ऊपर चल रहा है। वो जानते हैं कि वो इस वक्त जबरदस्त उनसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पिछले एक साल से वो ये आश्वस्त करते आए थे कि जो लड़ाई है ये अगर सबका सहयोग मिलेगा तो जीत जाएंगे। लोगों ने अपनी ओर से पूरा सहयोग भी दिया। पिछले साल जब लॉकडाउन का ऐलान किया था तब सिर्फ 21 दिनों का वक्त पीएम मोदी ने मांगा था, ये बात अलग है कि बढ़ाते बढ़ाते वो 3 महीने तक का लॉकडाउन जो है वो खिंच गया था। एक बार फिर से कई राज्य सरकारें जो हैं, हालांकि इस बार ये फैसला किया गया कि राज्य सरकारों के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया गया कि वो इस बारे में तय करें कि उन्हें लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। हम देख रहे हैं कि कई राज्य सरकारें अलग अलग नाम से, वो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन लॉकडाउन लगा रहे हैं। राजस्थान में ये लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, कुछ देर पहले ही झारखंड में हुआ है, चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में भी कल लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे वक्त पर पीएम मोदी का आना जो देश की जनता के सामने आकर के ये कहना कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए, इसके बजाय आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाइए, लोगों से कहिए कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करें, घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सारी बातें पीएम मोदी ने आकर के कही। तो ये राज्यों को भी संदेश है कि आप हड़बड़ी में ताबड़तोड़ लॉकडाउन का इस्तेमाल ना करें, लॉकडाउन कोई रामबाण नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल उलट है पिछले साल की परिस्थिति के, तब ये कहा गया था कि लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका है और अब लॉकडाउन जो है वो आखिरी तरीका बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे उनकी अपनी दलीलें हैं पीएम मोदी की। वो ये कह रहे हैं कि भारत ने वैक्सीन बना लिया है, दुनिया का सबसे सस्ता वैक्सीन है, अभी तक 13 करोड़ भारतीयों को ये वैक्सीन लगाया जा चुका है। वो भी ये बात भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में दवाइयां जो है सबसे ज्यादा बन रही है। ये बात अलग है कि आज जो परिस्थिति है रकमा, हम जब बात कर रहे हैं कि लोगों के पास ना दवा है, रेमडेसिविर दवा जो है वो कालाबाजारी उसकी हो रही है, अस्पतालों में वो दवा नहीं है। मैं खुद अभी एक अपने परिचित के लिए ये दवा का इंतजाम करने में जुटा हुआ हूं, बड़ी मुश्किल से दवा बाहर से अरेंजमेंट हो पाया है, वो भी कई ज्यादा गुना कीमत के ऊपर। तो ये स्थिति बनी हुई है रेमडेसिविर दवा को लेकर। ऑक्सीजन का जिक्र आपने किया नगमा, किस तरह से आज दिल्ली हाईकोर्ट को ये बार बार टोकना पड़ा, सरकार को कहना पड़ा, केंद्र सरकार के वकील को ये बोलना पड़ा कि जो दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल है वहां पे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। अहमदनगर की खबर हम लगातार आज दिन भर दिखा रहे हैं जहां पर कि 2 घंटे की 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। महाराष्ट्र के कई और शहरों में यही हाल है। मुंबई से रिपोर्ट आई थी, एक डॉक्टर का वीडियो आया जो वीडियो रिकॉर्ड करते करते वो रोने लगी थी, कहने लगी थी कि जो युवा है वो इस बीमारी को हल्के में ना लें, और ये भी कहा कि किस तरह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ये पूरे देश में त्राहीमाम हो रहा है। तो जाहिर सी बात थी कि ऐसे में पीएम मोदी को आना ही था, आकर के उनको ये कहना ही था, विश्वास दिलाना ही था लोगों को कि इस लड़ाई में भी शायद जीत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार जो दूसरी लहर आई है बहुत विकराल स्वरूप में इस लहर आई है, वो जानते हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद इसका मुकाबला करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, जो कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह से शमशान घाटों में लगातार लाशों का ढेर लगा हुआ है, कब्रिस्तान में लाशों का ढेर लगा हुआ है, और लोग जो है तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं किसी भी तरह से उनको मदद मिले। तो ऐसे में उनको आना पड़ा, कहना पड़ा, लेकिन फिर भी जैसा आप कह रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म बातें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं, लोग चाहते हैं कि उनको तुरंत राहत मिले। लोग अपील कर रहे हैं कि उनके परिचितों को आईसीयू में बेड मिले, उनके जो बीमार लोग हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल 30 पर 25 पर आ गया है उनको तुरंत आईसीयू में एडमिशन दिया जाए, वेंटिलेटर लगाया जाए। वो सब कहां हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेड है या नहीं है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास में या देश के दूसरे शहरों में? हम तो शहरों में रहते, हम शहर की बात कर सकते, लेकिन गांव में कस्बों में वहां क्या हो रहा है, वहां किस तरह का जर्जर व्यवस्था है हेल्थ सिस्टम की, हमसे किसी से छुपा नहीं है, तो वहां पर क्या बुरा हाल हो रहा होगा आप और हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। जांच की बात करें आरटीपीसीआर, वो 3 दिन 4-4 दिन उसको रिपोर्ट आने में लग रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को कल कहना पड़ा कि आप अगर वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, तो आपकी रिपोर्ट आरटीपीसीआर की 12 घंटे में आ जाएगी, लेकिन आम आदमी को 3-3, 4-4 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे कुछ परिचित हैं जिन्होंने अपनी आरटीपीसीआर जांच कराई है, उनको लंबी लाइन में लगना पड़ा लैब की, प्राइवेट लैब के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं किस तरह का बोझ देश की जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर आ गया है।
जी हाँ, धन्यवाद आपका अखिलेश। जिस संकट की बात आप कर रहे हैं, जो मौजूदा संकट लोगों के सामने वो बहुत बड़ा है और लोग लाचार हो रहे हैं, बेबस हैं। हमने तस्वीरें देखी हैं अलग अलग अस्पतालों की, शमशानों की तस्वीरें देखी हैं, डॉक्टरों की बेबस होते हुए कि अस्पतालों में दवाओं की कमी है, अस्पताल मरीजों को ये कह रहे हैं कि वो खुद जाके दवा का इंतजाम करें, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के बड़े अस्पतालों की हालत ये है कि चंद घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, महाराष्ट्र के अहमदनगर की हमने आपको तस्वीर दिखाई। हम इस संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो ये संदेश था उससे लोगों की इस समस्या का कितना हल हो सकता है या हुआ है, लोगों को कितना आश्वासन मिल पाया है। सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, तमाम जगह की स्थिति आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अस्पतालों का हाल देख रहे हैं, स्थिति जो इस समय है वो बहुत लाचारी और बेबसी की है, कई जगह तो वैक्सीन भी खत्म है। ऐसे में इस समय प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, कितना वो लोगों को आश्वासन देगा?
विश्वास दिलाने से ज्यादा बड़ा है लोगों को जो उनको सख्त जरूरत है, वो है ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड। नगमा, आपके इस लाइव पे आने से पहले मैं एक दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में एक मरीज के लिए ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कर रहा था, जिसके लिए पिछले 3 घंटे से हमारी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती कोशिश में है, लेकिन हम लोग मिलकर के वो ऑक्सीजन बेड नहीं दिला पा रहे हैं। तो शायद इस वक्त जरूरत यह है। शुक्रवार को नगमा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। शुक्रवार आज शनिवार 3 दिन बाद ऑक्सीजन की कमी होती है। बड़े बड़े अस्पताल देश के वो कहते हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर आनंद विहार में खड़े लगातार एक के बाद एक बस आ रही है और इसमें प्रवासी मजदूर जा रहे हैं। इनका कहना है कि पिछली बार भी ऐसे ही बोला था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन बढ़ा करके 3 महीने कर दिया गया था। तो अब जो पहले हुआ है 3 महीने 21 दिन के बाद बढ़ाते बढ़ाते, उनको कहना है अगर हम बस नहीं लेके जाएंगे तो बाद में पैदल जाना पड़ेगा और सरकार हमें नहीं पूछेगी, हम लोग सड़क पर मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही है उसे लोगों में जरूर थोड़ा सा भरोसा आएगा। कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो बोला है कि विश्वास रखिए, धीरज रखिए, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इससे लोगों में एक आशा आएगी जिस तरीके से पूरा माहौल खराब हो गया है?
हाँ, जो हमारे बड़े हैं और जो भी करेंगे सो जाके ही कर रहे हैं,
जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो तो
जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं,
अच्छे के लिए कर रहे हैं।
लगता है कि उनका ये कहना तो लोगों में भरोसा आएगा?
भरोसा उनका, हमारा भरोसा है। वो बड़े हैं सबके, जो वो कहेंगे वो होना,
जो होना है वो कह रहे हैं कि आप लोग जाइए मत, यहाँ रहिए, यहाँ पर आपको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, वो ये कह रहे हैं।
ठीक है, रंगे क्यों ना रंगे।
तो आप जा रही हैं गांव की, रुकेंगे
ना? गांव से आए यहाँ पर।
अच्छा
हाँ।
तो आप देखिए यहाँ पर लोगों में जाहिर सी बात है अभी वो लोग यहाँ पर आए हैं, सुना नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनते हैं लोगों में जरूर भरोसा आता है। लेकिन नगमा एक ग्राउंड रिपोर्टर के तौर पर एक साल से नगमा हम लोग ये एक स्टोरी कवर कर रहे हैं, लेकिन जो पहले दिन तस्वीर थी कि बेड नहीं मिल रहा है, वो आज भी बेड नहीं मिल रहा है। एक साल बाद आईसीयू नहीं मिल रहा, तो एक साल बाद आईसीयू नहीं मिल रहा। वेंटिलेटर तो ख्वाब है इस समय लोगों के लिए, नगमा इस समय ख्वाब है लोगों के लिए उनको वेंटिलेटर मिल जाए। हमने खुद जाकर के कब्रिस्तान से हमने खुद जाकर के जी नगमा
जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उसके बावजूद प्रवासी मजदूर इतनी ज्यादा संख्या में निकल रहा है, अब ये देखना होगा कि उनके ऊपर कितना असर पड़ता है। प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं कि लॉकडाउन आपका आखिरी विकल्प होना चाहिए और राज्यों को एक तरह से वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन ना लगाएं, जो कि पिछली बार के मुकाबले अलग है, जो पिछले साल का लॉकडाउन था उसके मुकाबले, और ये इस समय जबकि मुंबई में इस बात पर विचार हो रहा है और ये अंदेशा है कि पूर्ण लॉकडाउन वहां भी हो सकता है। अब ऐसे में जो प्रवासी मजदूरों की कतारें लगने लगी हैं, जो हम कल से देख रहे हैं कि आनंद विहार बस अड्डे पर, दिल्ली के इलाके में, गाजियाबाद में भीड़ लगी है, क्या वो भीड़ कम होगी? क्या ये कामगार प्रवासी मजदूर रुकेंगे? मुख्यमंत्री दिल्ली के अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी क्या वो लोग रुकेंगे यहां पर? पलायन कम होगा, ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री ने जो अहम बातें कही हैं एक बार हम आपको फिर सुनाते हैं। राष्ट्र के नाम जो उनका संदेश था उसमें क्या वो मुख्य बातें हैं आपके लिए, सुनिए।
हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है।
हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर वली। डॉक्टर वली, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो आपने भी सुनी होंगी और जो मौजूदा स्थिति है उसको तो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है इस समय और संकट जो है ऑक्सीजन का, इसमें दो बातें समझने की हैं। एक तो ये ऑक्सीजन का संकट इतना ज्यादा क्यों है? पिछले साल मरीज वेंटिलेटर पर जा रहे थे, अभी ऑक्सीजन की मांग ज्यादा है, ये जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में यहां पर क्यों नहीं, और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत इस बार पेशेंट्स को पड़ रही है? प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उससे आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली जैसे जगह पे क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्दी हो जाएगी? अब
थैंक यू नगमा जी, ये मैंने नोट किए हैं, 18 पॉइंट्स बोले हैं प्रधानमंत्री जी ने। ऑक्सीजन का जो आपने सवाल उठाया इस वक्त, ये सबसे बड़ी लाइफ सेविंग आर्टिकल है या लाइफ सेविंग कमोडिटी है। और ऑक्सीजन, मेरा जहां तक ख्याल है, जो आपका सवाल है कि कमी क्यों पड़ रही है, कुछ लोगों ने इस बार, उनको ये पता लग गया था कि इस बीमारी में ऑक्सीजन होती है जरूरी, तो उन्होंने होर्डिंग कर लिया, छोटे सिलेंडर्स घर में रख लिए हैं, या उन्होंने कहीं ना कहीं से इस तरह का कुछ काम किया है जिससे सर्कुलेटिंग सिलेंडर्स कम हो गए। तो कल भी मैं देख रहा था जो ऑक्सीजन वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास रिफिल की बॉटल्स छोटी वाली जो है वो शॉर्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये सिलेंडर्स जो हैं ये कम हो गए हैं, जो व्यवहार में थे, जो काउंटिंग में थे वो कम हो गए हैं। और दूसरा जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमें जो बड़ी गाड़ियां हैं जो ऑक्सीजन के बड़े वो लिक्विड ऑक्सीजन के कैरियर्स हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन फ्रेंडली ट्रेन्स के जरिए हमको पहुंचाए जाएंगे। इन द मीन टाइम हमको ये चाहिए कि जहां जहां जिन लोगों के पास ऑक्सीजन है वो अपना जो उन्होंने होल्डिंग कर रखी है उसको निकालें और हॉस्पिटल को डोनेट करें।
जी जी डॉक्टर वाली एक बात ये कि जब अगर ऑक्सीजन की होर्डिंग हो रही थी तो ये तो एक एसेंशियल ऐसी कमोडिटी है, अगर लोगों को ये अंदाजा हो गया था तो सरकारों को भी अंदाजा होगा, तो इसको रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी अब जो ये टकराव आप देख रहे हैं कोर्ट में कि दिल्ली सरकार कोर्ट में है, केंद्र के प्रतिनिधि कोर्ट में है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में ये हालत भी है, लोग देख रहे हैं जाकर, हमारे पत्रकार देख रहे हैं कि वहां पर कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 12, कहीं 24, ये है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, दिल्ली के पास ऑक्सीजन है, लोगों की जाने जा रही हैं, इस समय टकराव ऑक्सीजन का है, लड़ाई ऑक्सीजन की है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी है या नहीं?
नहीं, वो बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो गई नगमा जी के पेशेंट जिस स्पीड से आ रहे हैं, आप ही के कई चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि जिस स्पीड से एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल के अंदर बी लाइन बनाना जिसको कहते हैं कि एक लाइन में कतार लगी हुई है और उन्हीं कतारों में एक आध का पेशेंट की डेथ भी हो रही है, तो ये कभी नहीं हुआ था, इस तरह से ये सिनेरियो कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो ग्रॉसली ओवरबर्डनड है, उसमें जो पेशेंट्स की कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स की हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है, जैसे इमरजेंसी में 4 डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं तो वो 4 पेशेंट को हैंडल करेंगे और बाहर 20 एम्बुलेंसेस की लाइन लग रही है तो दे हैव टू वेट, तो उसमें ये एक नेचुरल चीज है, वेटिंग जो है उसमें नेचुरल चीज हो जाएगी और ये हुआ है और ये होना है और आगे चल के और ना हो जाए। शुरू में तो शमशान में जो है एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी जो बॉडी लेके जा रही थी, अब जिंदा लोगों की एम्बुलेंस की लाइनें लगी हैं, तो ये सब चीजें। और दूसरी जो है मैं जो अब आपके चैनल के जरिए से एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही, शायद उन्होंने रिस्पेक्टफुली कहा डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, नर्सेस के लिए, वार्ड बॉयज के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए, मैं अब इस बात पे जोर देने लगा हूं कि अब सब चीजों को छोड़ के हमारा अटेंशन इस पर जाना चाहिए कि कहीं ये हमारा मेडिकल फोर्स जो है ये फेल ना हो जाए, इसको हमें संभाल के संजो के रखना है। हमारे डॉक्टर पिछले 15 महीने से ओवरबर्डनड है, नर्सेज ओवरबर्डनड है, उन्होंने अपनी पूरे पूरे दिन दो दो दिन पीपी किट नहीं खोली है, और ये बहुत बड़ा एक मैं मैसेज दे रहा हूं आपके चैनल से कि हमारे जिस तरह से हमको इस एपिसोड में कोरोना 2 में बच्चों की हिफाजत करनी है, यंगस्टर्स की हिफाजत करनी है, उनकी जान बचानी है प्रायोरिटी पे, ट्राइज भी एक तरह का हमको करना पड़ सकता है आने वाले चंद दिनों के बाद, उसी तरह से हमने अपने मेडिकल फोर्स को
तो
भी
मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाह रही हूँ। एक तो मेडिकल फोर्स पे बहुत ज्यादा बर्डन, आप जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं वो 100% सच है, और तमाम लोग जितना भी इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि किस तरह हमारी मेडिकल फोर्स जो है वो लगातार लगी हुई है साल भर से ज्यादा इसमें। आपने बच्चों और युवाओं की बात की, इसके ऊपर बड़ा असमंजस है, क्या इस बार वायरस ज्यादा युवाओं को अफेक्ट कर रहा है? बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाम बातें हवा में हैं, कोई कहते हैं कोई नहीं है, पर इस बार क्या बच्चों को भी खतरा है, और अगर बच्चों को खतरा है तो उनके लिए किस तरह का खतरा है और किस तरह के स्पेशलिस्ट बच्चों के लिए हैं जहां ले जाया जाए बच्चों को? और ऑक्सीजन की बात प्रधानमंत्री भी अब जो कही है, तो मेडिसिनल ऑक्सीजन जो है और हवा में ऑक्सीजन जो है उसमें क्या फर्क होता है, ये भी लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर वो कैसे इतनी ज्यादा जो ये रेयर कमोडिटी है और उसकी जरूरत कब पड़ जाती है।
देखिए, ये हवा की जो ऑक्सीजन होती है वो हमको थेरेप्यूटिकली यूज नहीं कर सकते। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब ये होता है वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है और सिलेंडर्स में भर के वो यूज हो सकती है। हॉस्पिटल्स में जनरली एक रूम होता है जिसको हम मैनिफोल्ड रूम कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन स्टोर्ड रहती है और पाइप्स के जरिए जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी शॉर्टेज ट्रांसपोर्ट की वजह से हुई होगी, मुझको बिल्कुल ये महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मशीनरी उसको ट्रांसपोर्ट में लगी है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अब उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर डिमांड आ जाएगी तो वो मशीनरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, अब उसमें हमको ऑगमेंट करना पड़ेगा। एक तो ये बात है, दूसरी ये जो बीमारी है आपने इसमें बच्चों का भी जिक्र किया बड़ों का भी, इसमें प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है। एक मेथड होता है जो हम इसमें ट्रीट करते हैं, मैंने खुद उससे वो मुझे जब कोरोना हुआ था ऑक्सीजन लिया, उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन कहते हैं। हाई फ्लो जब हम ऑक्सीजन कहते हैं उसमें 12 लीटर 15 लीटर के करीब ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, तो वो बर्डन पड़ जाता है हॉस्पिटल के सिस्टम पे। और ये जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये इस बार बच्चों में ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है, ये बहुत जरूरी एक बहुत बड़ा पहलू है, इसकी पहचान नहीं होती। उमूमन दस्त के लक्षण होते हैं या बच्चा उल्टी करता है, दूध नहीं पीता है, पेट में दर्द बताता है, जनरल से कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, हल्का बुखार आता है, और उनसे बड़ा जो लॉट है 12, 15, 18 साल का, उनमें भी बड़े वेग सिम्टम्स हैं जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो मैंने अभी बताए ऐड हो गए हैं। नवा जी ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल सिचुएशन है। टेस्ट की रिपोर्ट अब 3-3 दिन में आ रही है, छोटी जगहों में 5-5 दिन में आ रही है। मैं आपसे दिल से ये बात कह रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इट्स ए वार लाइक सिचुएशन। हम सबको इसमें मदद करनी है एक दूसरे की, और फिर सबसे बड़ी मदद यह है कि हम बगैर जरूरत घर से ना निकले। आई एम कमिंग बैक टू द प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट, लॉकडाउन इज बिकम इट हैज बिकम ए बैड वर्ड। लॉकडाउन एक बहुत ही नामाकूल वर्ड बन चुका है, जो कोई नहीं करना चाहता है, कोई नहीं महसूस करना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं ऑर्डर करना चाहता। और कोर्ट्स में जाया जा रहा है इसके लिए, बड़ी अजीब सिचुएशन है, ये कोर्ट्स में जाया जा रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था ना सोचा था। लेकिन मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं, मेरा लॉकडाउन ये है, मेरा लॉकडाउन MASK, मेरा अपना सुरक्षा कवच है, मेरा दूसरा लॉकडाउन मेरे पैर है जिन पर मैं चल के नहीं जाऊंगा। अगर हम ये सब अहद कर लें पाबंदी के साथ और हम घर पे रहे तो हम शायद इसका मुकाबला कर चुकेंगे, कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी और रमजान का भी जिक्र किया है, और डॉक्टर्स के लिए जो उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है, दिखाई है शुरू में बयान के अपने, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और अपने सब डॉक्टर कुलीग्स का जो जी तोड़ के खिदमत कर रहे हैं विद और विदाउट ऑक्सीजन, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा एक वॉर लाइक सिचुएशन है जैसा कि मैंने कहा, एंड इज ऑलमोस्ट अनमैनेजेबल। ये ऊपर वाले वॉर लाइक
सिचुएशन में लोग अपनी मदद खुद करें, अभी सरकारें कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करना बाकी है, क्योंकि लोगों के पास अस्पतालों में जो उनको सुविधाएं मिलनी थी उसमें कमी है, ऑक्सीजन में कमी है, दवाओं में कमी है, तमाम बाकी इंतजाम जो है उसमें इस समय बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर। तो जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, आप मोहल्लों में ग्रुप बनाइए, कहने का मतलब शायद ये है कि आप अपनी मदद खुद करें अभी और जितना हो सके अपने को सुरक्षित रखें। डॉक्टर वाली शुक्रिया आपका इस बात को समझाने और बताने के लिए, लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के पास वो बचे हुए हैं अभी कि आखिर जिस तरह की बदहाली बेबसी इस समय है उससे किस तरह से लोग निपटेंगे, ये स्थिति कब सुधरेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं प्राइम टाइम में। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया और जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में चर्चा की कि किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये भी कहा कि लॉकडाउन राज्यों का आखिरी विकल्प होना चाहिए, और हम जानते हैं कि मुंबई में लॉकडाउन की बात हो रही है। हमारे साथ सोहित मिश्रा जुड़े हैं, स्थिति बहुत खराब है सोहित वहां पर। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बात का कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अंदेशा है कि पूर्ण लॉकडाउन भी हो जाए?
जी बिल्कुल, देखिए आज ही महाराष्ट्र के कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई और सभी मंत्रियों ने मिलकर इस बात का जिक्र किया और कहा कि जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था पूर्ण लॉकडाउन, उसी तरह से लगाया जाना चाहिए। और कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसे लेकर राज्य की जनता को संबोधित भी करेंगे। रही बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, वही बात पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे। वो जितनी बार लोगों को संबोधित करते थे वो यही कहते थे कि मैं नहीं चाहता हूं कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो फिर कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मैं अभी मुंबई के मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं, इतना खाली मरीन ड्राइव शायद ही किसी ने देखा होगा। अभी भी महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है, कई सारे कठोर नियम शुरू किए गए हैं, और धारा 144 लगाए गए जब लॉकडाउन नहीं लगाया गया उसके बावजूद हमने देखा कि दो दिन पहले 68,000 मामले सामने आए थे, आज भी 62,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 500 से ज्यादा लोगों की राज्य में मौत हुई है। तो अगर इतने सारे कड़े नियम लगाने के बावजूद अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो फिर राज्य के पास भी कोई और कदम नहीं उठता। तो भले ही प्रधानमंत्री ने इसकी बात की हो, राज्य में महाराष्ट्र में इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए अब लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है।
जी हाँ, धन्यवाद आपका सोहित इस चर्चा के लिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में, खास करके मुंबई में लॉकडाउन की बात की जा रही है क्योंकि हालात वहां पर काफी खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इस बात को आज कहा है कि लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प होना चाहिए, अंतिम विकल्प होना चाहिए, राज्यों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने चाहिए क्योंकि छोटे छोटे इलाकों में लॉकडाउन किया जा सकता है, लेकिन ये खबरें हैं कि महाराष्ट्र में कल से लॉकडाउन हो सकता है। तो आज प्राइम टाइम में इतना ही।